जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम अशरण शरण शरण प्रभुले
ओम अशरण शरण शरण प्रभुले
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
गुरु राखहि जो को पविधाता वचन प्रतीतन जाई
गुरु के वचन प्रतीतन जाई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव
मन क्रम बचन कपट तजी जब लगी जनु न तुमार तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। तुलसीदास जी का निर्णय है मन से आचरण से और वाणी से कपट का त्याग करके जब तक आपका जन नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपचार करने से भी सुख सपने में भी नहीं है। लेकिन हम भगवान को छोड़ के करोड़ों उपचार में लगे हुए हैं। मन कर्म वचन से कपट का त्याग करके जब तक आपका जन नहीं हो जाता तब तक सुख सपने नहीं सपने में भी उसे सुख नहीं मिल सकता कि ये कोटि उपचार अन्य करोड़ों उपचार करें तब भी नहीं। लेकिन हम उपचार करते हैं करोड़ों 33 करोड़ देवी देवता 33 करोड़ नाम और हर देवता के अलग मंत्र और हर देवता के अलग पुजारी या तो तुलसीदास कुछ भूल कर बैठे या हमने आज्ञा का उल्लंघन किया होगा कहीं न कहीं भूल तो अवश्य है। भगवान ही एक ऐसी सत्ता सृष्टि में एक है वो दो कभी हुआ ही नहीं तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि भला रहता कहाँ है अश प्रभु हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी कण कण में व्याप्त है एक है भगवान एक से डेढ़ कभी हुआ ही नहीं वो अपरिवर्तनशील है अजर अमर है काल से अतीत है सर्वज्ञ है और रहता कहाँ है परम सत्य है तो सत्य चेतन घन आनंद राशि भला वो असीम आनंद की राशि वो परमात्मा प्रभु रहते कहाँ है तो कहते हैं हृदय में अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है अछत है ऑपरेशन करो कलेजा काट के अलग रख दो वो बचा रहेगा उसे क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। अविकारी आप गधा घोड़ा कुकुर कुछ भी खाओ कोई भी चाल चलो वो दृष्टा के रूप में उससे लिपायमान नहीं होता विकारों से अलग है निर्लेप है केवल दृष्टा के रूप में है। जब कभी किसी ने भटकते भटकते भगवान को पाया तो उस प्रभु को हृदय के अंदर ही पाया पूर्व आपके पूर्व मनुष्यों ने। भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शेरजुन तिष्ठति वो प्रभु सबके हृदय में निवास करता है और वो व्यापक है एक है और कण कण में व्याप्त है उसका निवास है जीव जगत में कण कण में व्याप्त। यदि दूसरा भी भगवान कदाचित पैदा हो भी गया तो रहेगा कहाँ इस विधाता की सृष्टि में पहले से कण कण में व्याप्त होके है। दूसरा आएगा या तो ब्रह्मा कोई सृष्टि रचे ब्रह्मा भी उनकी नाभि से उत्पन्न रज कहाँ से देगा। इसलिए भगवान केवल एक उसी परम प्रभु की संतान हो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उस परमात्मा के विशुद्ध अंश हो। वेदों का उद्घोष था कि अमृतस्य पुत्रः, तुम उस मृत्यु से परे अविनाशी अमृत तत्व के शुद्ध विशुद्ध पुत्र हो, अर्थात सब परमात्मा की संतान हो। भगवान ही एक ऐसा एक है और उनकी शरण मन कर्म वचन से गए बिना सपने में भी जीव विश्राम नहीं पाता। लेकिन हम सुनते हैं 60 करोड़ या कितने हिंदू हैं और 33 करोड़ देवता, और दो दो आदमी का एक संगठन, भला एकता भी नहीं हो सकती, समृद्धि भी नहीं आ सकती। एक समय था इसी भारतवर्ष में कि शिव बड़ा की राम, तलवारें चलती थी, सरजू का खून लाल हो गया, खून वो नदी का पानी लाल हो गया खून से। झगड़ा केवल इतना कि शिव बड़ा की वैष्णु, शाक्त बड़ा की पुरुष पूजने वाला, ये बड़े भयंकर झगड़े। तुलसीदास जी की रामायण एक निर्दोष साहित्य है, इन्होंने सब झगड़ों को भली प्रकार निपटाया है, वो भी भगवान की प्रेरणा से। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, रामायण के अनुसार भजन केवल एक प्रभु का ही करना चाहिए। जो उस परमात्मा की शरण है वो धर्म को जानता है, अनपढ़ होते भी वेद का विद्वान है। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ, धर्म का मर्मज्ञ विशेषज्ञ गुणी है, ज्ञाता है, पृथ्वी में सम्मानित पुरुष और दानदाता है, उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन की राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो क्रिया में दक्ष है, सारे लक्षणों से युक्त है। कौन, और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है। कौन की राम एक प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। भगवान शिव ने अंत में निर्णय दिया कि रामचित मानस भगवान शिव के हृदय की उपज है। मूल मानस के निर्माता शिव हैं, रचि महेश निज मानस राखा। अंत में शिव कहते हैं, शो कुल धन्य उमा सुन, वो सारा कुल भाग्यवान है, कृतार्थ है। शो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। एक राम उन प्रभु के चरण कमलों में जिसका अनुराग पैदा हो गया हो, वो भाव श्रद्धा जग गई हो, वो कुल कृतार्थ है, वो तरा हुआ और तारने वाला है। तो एक परमात्मा एक प्रभु के प्रति समर्पण श्रद्धा, वो धार्मिक है, वेदों का सिद्धांत का ज्ञाता है, पंडित भी है, बस इतना ही कुल धर्म। लेकिन हमारे भारतवर्ष में लाला लोग पूजेंगे, चित्रगुप्त की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है, और चित्रगुप्त यमराज के लेखाकार, जब भगवान कृष्ण अपने गुरु का लड़का लेने गए यमपुरी, तो पांव की धमक सुनाई पड़ने लगी। तो यमराज ने कहा, ये किसके पांव की धमक आ रही है? तो चित्रगुप्त ने तुरंत रजिस्टर देखा, वहां से यहां तक खराब सनीमे वाले जो बनाए हों, तो बोले, इस वक्त इस क्षण में तो किसी के आने का कोई विधान नहीं है, तब कौन आ रहा? बोले, सजीव आ रहा है। भगवान ने संघ बजाया, यमपुरी हिलने लगी। तो चित्रगुप्त माने होता है यमराज का लेखाकार, पता नहीं पूजाई करके रावण के दरबार में वरुण कुबेर पवन धनुधारी अग्निकाल यम सब अधिकारी, आयुष करें सकल भय बीता, आज्ञा पालन करते थे भयभीत होके। एक बार तो सरेंडर कराई लिया उसने। क्या है अस्तित्व, एक प्रश्न है। आज वही और ये प्रजापति कुम्हार ब्रह्मा की पूजा करते हैं कि वो इन पात्रों को गढ़ते हैं हम पूर्वा, एक अटकली हो सकती है। तो ये लोहा कारोबारी, कोई भी उद्योगपति, इसकी विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। शिवाय भगवान के जब किसी का अस्तित्व नहीं, बीच में नए नए देवता, फिर धन का देवता, पानी का देवता, धरती का देवता, आसमान का देवता, देवताओं की कतार लग गई। अब ऐसी परिस्थिति में हर विभाग का एक देवता, युद्ध का देवता दुर्गा है ना। अब बोलो, ये कोई आपको एक एक वस्तु दे सकते हैं, वो युद्ध में आपको शक्ति दे देगी, वो थोड़ा धन दे देंगे, लेकिन मोक्ष देने की क्षमता इसमें से किसी में नहीं। आपको धन भी मिले, समृद्धि भी मिले और मोक्ष भी मिले, उसके लिए तो एक प्रभु की शरण जाना पड़ेगा। भागवत में उल्लेख है, पति पत्नी में सहृदयता बनी रहे। यदि ऐसी आपकी इच्छा है तो शिव पार्वती की पूजा कीजिए, विजय पाना है तो इंद्र की पूजा कीजिए, धन धान्य चाहिए तो लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कीजिए। इस प्रकार 25 नाम गिना के, और यदि आरोग्य चाहिए तो धनवंतरी की पूजा कीजिए। लेकिन आरोग्य, धन धान्य, सर्वांगीण समृद्धि और परम श्रेय की प्राप्ति, मोक्ष भी चाहिए तो एक परमात्मा की शरण जाओ, लोक लाह परलोक निबाहु। इसलिए एक परमात्मा का भजन, सारी समृद्धियों के स्रोत आपके साथ होंगे और भगवान के अंक में स्थान भी आपका होगा, परम पद भी आपकी मुट्ठी में होगा। इस जन्म में थोड़ा भी पार लगा तो अगले जन्म में वही करोगे, कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहीं पहुंच जाओगे जिसका नाम परम धाम है, शाश्वत समृद्धि है, विश्वकर्मा। जहां तक विश्वकर्मा का सवाल है तो मानस के अनुसार विश्व की संरचना करने वाला तो सुग्रीव घबराया हुआ था बुरी तरह। बोले, हनुमान जल्दी जाओ, पता लगाओ, ये दो शूरवीर आ रहे हैं, बाली का मन मैला है, कहीं उसने ने भेजे हो हमारी हत्या के लिए, तुम इस सारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, निश्चिंत रहें राजन, मैं अभी देखता हूँ। तुरंत उन्होंने ये राम नामी ओढ़ा, ब्राह्मण का विशुद्ध वेश बनाया, ये कवच पहन के पहुंचा, क्योंकि कैसा भी सूरवीर हो, विप्र के बेस पर तो अस्त्र नहीं उठा सकता, और जाके लगा संस्कृत में उल्टी सीधी हनुमान जी लगे परीक्षा लेने की तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। आप ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन देवताओं में से कोई है, कि तुम तीन देव महु को, नर नारायण की तुम दो, अथवा आप नर और नारायण हैं, और कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। तो जगत के कारण, जगत की उत्पत्ति के कारण, भव से उद्धार करने वाले, पृथ्वी का भार हरने वाले साक्षात परमात्मा है, आप कौन है? तो तीन देवता कोई और है, नर नारायण कोई और है, और जगत का निर्माता, भव से उद्धार करता, भार हरने वाला कोई और। तो विश्वकर्मा का काम है संरचना, ये तो भगवान ने कर दी। एक बार महाराजा मनु, वो सृष्टि के आदि मनु, देवलोक वगैरह उनका जन्माया और बसाया हुआ, उस महाराजा मनु को भी कोई कमी नहीं थी सृष्टि में, फिर भी एक दिन दुखी हो गए। ये दुख सबको होता है, केवल गरीब को नहीं होता, महाराजा धी राजाओं को भी। तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, को ही न विषय विराग, भवन बसत भाचो त्रपन। हृदय में बहुत दुख लगा कि चौथापन आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं होना चाहता है, बरबस राज्य पुत्र को दिया और जन्म बगैर हरि के भजन के व्यर्थ जाना चाहता है, और बरबस राज्य सौंपा, कारभार सौंपा और सीधे गए नैमिषारण्य तपोभूमि, वहाँ ऋषियों से मिले, साधना का क्रम समझा और शांत एकांत में जब भजन में बैठे तो विचार किया कि विष्णु विरंची, मैं भजन किसका करने जा रहा हूँ। तो विष्णु विरंची, शंभु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना, ऐसे हूँ प्रभु सेवक बसे हैं, भक्त हेतु लीला तनु गहें, जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजई अभिलाखा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान जिनके अंश मात्र से अनंत उत्पन्न होते और विलय होते रहते हैं, ऐसा भी कोई भगवान है जो सेवक के बस में है? यदि वेद का ये वाक्य सच है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होंगी। और शांत एकांत भजन में लग गए। पूरा भारत या तो वैष्णु कहलाता है, या सेव कहलाता है, या ब्रह्मा का पुजारी, या शाक्त कहलाता है, लेकिन मनु महाराज ने भजन किया किसका? जिसके अंश से अनंत उत्पन्न होते हैं, विलय होते रहते हैं, अर्थात विश्व का निर्माता, प्रथम उत्पत्ति स्थिति संहार करता एक परमात्मा है, वो विश्व के रचयिता निर्माता है, व्यवस्थाकार है, परिवर्तन दाता है। हनुमान जब वही है भगवान, विश्वकर्मा माने विश्वकर्मा भगवान, विश्व की संरचना और इसकी गतिविधि का देखरेख एक परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं तुलसीदास। जब हनुमान लंका में पहुंच गया, लंका और रावण के वहां दरबार में उपस्थित हुआ, हाथ जोड़ के देवता लोग खड़े थे। हनुमान ने देखा उसका ऐश्वर्य कि नवों ग्रह वहां बंदी ग्रह में बंद थे, और कर जोड़े सुर दिशित विनीता, बिरकुटी विलोकत सकल सभीता, भयभीत होके खड़े थे। वरुण कुबेर पवन धनुधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी, आयसु करें सकल भयभीता, आई नवई नित चरण विनीता। विनीत भाव से चरणों में नमन किया करते थे। देवतावां अनुकंपा करने नहीं गए थे, वो डंडा के जोर से गए थे। आयस करें सकल भय भीता, वो मना रहे थे, भगवान से स्तुति किया, प्रभु रक्षा करो, बोले चिंता मत करो, मैं आऊंगा। भगवान का दूत हनुमान उन्हीं के बीच में अकेला खड़ा। रावण ने एड़ी से चोटी तक देखा हनुमान को, बोले क्यों रे दुष्ट मरकट, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? दशानन बोल, तुमने वाटिका उजाड़ी तो किसके बल से, अक्षय कुमार को मारा तो किसके बल से, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मेरा सुयश कभी नहीं सुना क्या? तब हनुमान बोले, बोल किसके बल से? तो सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल वीर चति माया, यावन मात्र ब्रह्मांड को, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पाताल जड़ चेतन स्थावर, अनंत ब्रह्मांड की संरचना जिनका बल पाकर माया रचा करती है। माया जिससे रचती है ना, वो काती और कारखाना सब भगवान की देन। तो पाई जासु बल, वो मटेरियल भगवान देते हैं। पाई जासु बल विरचति माया, जासु बल विरंची हरि ईसा, पालई सिरजई हरई दस सीसा। जिसका बल पाके विधाता संरचना करते हैं, उन्हीं का बल पाके विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। जासु बल लवले सते जितेउ चरा चर झारी, ताशु दूत में जा करी हरियाने प्रिय नारी। जिसका लवलेश बल पाके तुमने चराचर जगत को जीत लिया है, मैं उन्हीं परम प्रभु का दूत हूं जिनकी तुम प्रिय भारिया को हर लाया है। तो माया में कहां हैसियत, माया खल नर्तकी बिचारी, वो बेचारी नाचने वाली नटनी मात्र, वो तो कारखाने का एक वो हो सकता है, वो मैनेजर हो, इसके आगे कुछ नहीं। माया जिसका बल पाके संरचना करती है, ब्रह्मा विष्णु जिनका बल पाके उत्पत्ति स्थिति संहार, जिसका बल पाके शेषनाग पृथ्वी थामते हैं, जिनका लेस मात्र बल पाके तू इतरा के घूम रहा है, मैं उन्हीं परम प्रभु का दूत हूं। तो विश्व को किसने रचाया, किसने बनाया, विश्व में परिवर्तन नवीन गढ़न किसने दी, प्रभु ने। तो मूर्ति चाहे जो बना लो, पूजा तो भगवान की ही है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों में, ये पुराणों में विश्वकर्मा के उल्लेख मिलते हैं कि एक बार इंद्रप्रस्थ बनाना हुआ तो विश्वकर्मा था मैदानव, उसने वह इंद्रप्रस्थ बनाया, दुर्योधन वगैरह मुग्ध हो गए उसमें, फिर जुआ हुआ। हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया, एकदम सारा सोना मिट्टी का ढेर होकर गिर पड़ा, दो दिन में विश्वकर्मा ने ठीक कर दिया। वैसे ही दमकने लगी लंका, वो था रावण का ससुर मैदानव, भगवान कृष्ण की द्वारका विश्वकर्मा ने बना दिया, ये संभवतः देवता रहे हों। रस्ते में हमसे एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज विश्वकर्मा असुर रहा कि देवता? तो हम बोले भैया हमें तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, वो भी विश्वकर्मा ये भी विश्वकर्मा, दानव हो चाहे देवता है तो सगे भाई, एक बाप के बेटे, दीति अदिति की संतानें, थोड़ा थोड़ा अंतर है। और पूजा, एक बार इंद्र ने एक महल बनवाया और फिर उसे नशा सवार हो गया, काश ऐसा महल शायद सृष्टि में कभी बना हो, इसमें और भी सजा दूं इसको। तब विशेषज्ञों को बुलाया, अतिथियों को निमंत्रण दिया और जहां पहुंचे तो बोले जरा इस महल को देखिए, कोई कमी हो तो बता दें। तो हर आदमी कमी बता देगा कोई न कोई। तब विश्वकर्मा से कहा यहां सुधार दो, फिर किसी पार्टी को बुलाया, उसने कह दिया इधर कमी है, खिड़की ग्रिल ठीक नहीं, तो बोले यहां सुधार दो। फिर किसी पार्टी को बुलाया तो बोले वो गेट खुल जाता तो अच्छा रहता, बोले इसको सुधार दो। वर्षों बीत गए विश्वकर्मा के, ये आदमी की आदत है, बहुत सौंदर्य का कोई मापदंड तो सृष्टि में है ही नहीं, है कोई मापदंड? अमेरिका के एक चित्रकार ने 6 महीने श्रम करके एक बहुत बढ़िया चित्र बनाया, वो अपने ही चित्र देख के फूला नहीं समा रहा था, तो उसने चौराहे पर रख दिया कि और भी लोग तारीफ करें, और नीचे कल में रख दिया बहुत सी, बोले भाई इसमें कोई खराबी हो तो चिन्ह बिंदु लगा देना, मैं सुधार दूंगा। दूसरे दिन जब आके चित्र को देखा तो हजारों सुनना लगे थे उस पर, बड़ा क्रोध आया उसको, रात भर में घिस के एक चित्र बना के टांग दिया, इसमें कोई अच्छा समझ में आवे, अच्छा ही दिखाई पड़े, सोन दिए तो बिंदी लगा देना, उसमें भी हजारों बिंदी लग गई। तो संसार में सौंदर्य का कोई मापदंड तो है नहीं, और इंद्र के महल को जो ही आवे कोई न कोई अड़ंगा लगा जाए, वो बेचारा विश्वकर्मा वर्षों बीत गए, दुखी हो गए। एक बार लोमस ऋषि उधर से निकले, बोले भगवान ये इंद्र से हमारी जान बचा देते हो, सारी कला हमने उड़ेल दिया, पता नहीं फिर भी हमारा जान नहीं बच रही है, कोई न कोई कुछ अड़ंगा लगा ही देता है। तो बोले ठीक, लोमस जहां पहुंचे तो इंद्र सादर प्रणाम किया, और जिस वस्तु के जिस व्यक्ति के पास कोई विशेष वस्तु होती तो दिखाना चाहता है। तुरंत लोमश जी को घुमा फिरा के वहीं ले गया जहाँ विशिष्ट महल था। घुमाया अंदर, सोचा महात्मा कुछ कहेंगे, वो कुछ बोले नहीं। तब बोले, महाराज कैसा लगा? तो फिर भी नहीं बोले। तो बोले, कोई कमी हो तो बता दें, भगवान मैं सुधरवा दूंगा। तो बोले, राजन यही तो मैं से नहीं कह पा रहा हूँ, इसमें दो कमियां ऐसी है जिसको कोई सुधार ही नहीं सकता। तो इंद्र तो अपने ताव में आ गया। बोले, वाह देवराज, इंद्र ने सुधार सके, ऐसा क्या हो सकता है? तो बोले, भगवान आप बतावें तो कृपा करके। तो बोले, एक कमी तो ये है कि एक दिन ये गिर जाएगा, और दूसरी कमी ये है कि इसको बनाने वाला इसमें रह ही नहीं पाएगा, चला जाएगा। बस इंद्र हो गया चुप, दोनों बात सही थी। इस बनाने वाला इसमें रह नहीं पाएगा, आराम नहीं कर पाएगा, चला जाएगा, आराम कोई दूसरा ही करेगा। बस विश्वकर्मा की जान छूट गई। प्रतीत होता है कि विश्वकर्मा कोई इंद्र देवताओं के शिल्पी लगते हैं, लेकिन मूलत है तो ये जो देवताओं के शिल्पी, उनका अस्तित्व बड़ा धूमिल है। जिधर जिसने टांग पकड़ के खींचा उधर ही जाना पड़ा, लेकिन भगवान परम शिल्पी है। कर्म कांड में पहला श्लोक पढ़ा जाता है, सहस्र शीर शाह पुरुषः, इसका अर्थ यही है। दो श्लोक के बाद उस परम प्रभु के तेज के एक अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन और परिवर्तन है। तो निर्माता कौन हुआ, गढ़ने वाला कौन हुआ, रचना किसने की, और बाकी संपूर्ण अंशों से अपने स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ममैवांसो, मेरे एक अंश से सारी सृष्टि का पालन परिवर्तन और संचालन चलता है, इसलिए तुम मुझे देख, मेरी शरण हो जा। बोलो, विश्व में गढ़ने वाला कौन बना? एक परमात्मा, नाम चाहे जो हो, हम पूजा उन्हीं की करते हैं। एक बार शस्त्र पूजा हो रही थी एक परमात्मा की, अलग से कोई देवता नहीं। शस्त्र पूजा, अर्जुन से भीष्म ने कहा कल शस्त्र पूजा होगी। अर्जुन उस टाइम बहुत छोटा था। अर्जुन ने कहा, पिता मैं शस्त्र कोई भगवान है जो पूजा होगी? बोले, अरे पगले, शस्त्र भगवान नहीं है, पूजा तो भगवान की ही होगी, इसलिए कि शस्त्र में प्रभु हमें बरकत दें, कुशलता प्रदान करें, हम उत्तीर्ण हो जाएं। वास्तव में ये जो पूजा हो रही है, पूजा हम भगवान की ही करते हैं, लेकिन हमें कर्म पथ में प्रगति दें, हमें विकास दें, एक परमात्मा की पूजा है। शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा केवल भगवान है और कुछ नहीं। जोड़ी नाल उठाते हैं तो पहले गोड़ ले पड़ते हैं, तो क्या उस पत्थरे का ले पड़ते हैं? नहीं पड़ते। अखाड़े में देखो, पूरा वर्ल्ड अपने कारखाने में, कारोबार में पहले प्रणाम करता है भगवान को। भारत के बाहर न तो चित्रगुप्त है न विश्वकर्मा है, और भारत से सैकड़ों गुना ज्यादा लोहा जगत में प्रगति है उनका। रॉकेट, कौन कौन बम बने जाने क्या बना डाला, सब पूजा पहले करते हैं, एक प्रभु की प्रार्थना करते हैं, फिर कारोबार में हाथ लगाते हैं जिससे कि दुर्घटना न घटे और हमारा कार्य, हमारी मंजिल तय कर लूं हम अपने कारोबार में। वही हम भी करते हैं। तो रूप चाहे जितने भी हो, हमारा पूजा हमारी मूलत है। विश्व का कर्ता धर्ता संघर्ता है, कर्ता धर्ता और श्रृंगार करता एक परमात्मा है। सीता जी एक बार चक्कर में पड़ गई। माता सीता स्वयंवर में जब धनुष के सामने पहुंची तो बड़े बड़े भुजदंड वाले राजा उठे। सीता घबरा गई, कहीं लंठ ने तोड़ दे। फिर 10-10 हजार राजा उठे, तब भी धनुष टस से मस नहीं हुआ। तब सीता घबरा गई। तब राम ही बिलो की बै देही, सभे हृदय पिनवती जे हिते। भयभीत होके जो भी याद आ गया झटके में, सुरेश महेश दिनेश गणेश हर्षु गड़बड़ा माई, जो सब है हृदय बिनवती जे हिते। तो गणनायक बरदायक देवा, आज लगी की नीव तब सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, कर उचाप कर उताय हती थोड़ी। हे गणनायक हमारी विनय सुने, राम के पहुंचते ही धनुष हल्का कर दे। फिर शंकर जी से आराधना किया, हे भोलेनाथ आप मेरी से पुकार स्वीकार करें, धनुष को हल्का कर दें। तो देखी देखी रघुवीर तन सुरमनाव धरी धीर, तो सब देवताओं को धीरज धरके लगी मनाने, वो मैं विश्वकर्मा जरूर रहे होंगे जो धनुष बनाए रहे, उनसे कह देते हल्का कर दे तो एक एक रंदा मार देते शायद हल्का हो जाता, पता नहीं के कहते। देखी देखी रघुवीर तन सुरमनाव धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। आंखें प्रेम से छल छला उठी, रोमांच हो आया और सारे देवताओं को सामूहिक मनाने लगी। तो सारे देवता इंद्र कुबेर वरुण पवन सबको, गणेश को शंकर को सबको, लेकिन फिर भी कोई सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़े। तब फिर सीता जी ने आंखें बंद कर ली और फिर उन एक प्रभु का सुमरण आरंभ किया। जो मोरे मन बचिय रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो भगवान सकल युर वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। जो मेरे मन क्रम वचन से चरणों में निश्चल प्रेम है, तो भगवान कौन सा भगवान, वो 33 करोड़ से गुजर आई है सीता जी, सबको मना चुकी, तब फिर भगवान की शरण आई। तो भगवान कौन सकल युर वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी, अंतर प्रेम राम सब जाना, हृदय के प्रेम को प्रभु ने पहचाना, अब मुझे पुकार रहा है, पुकार रही है। तुरंत तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, उसी क्षण के मध्य में इधर पुकार और उस जिस क्षण में पुकार हुई उसी क्षण में धनुष टूट गया। वास्तव में भगवान की सेवा में देर नहीं लगती, हमारी सीढ़ी है श्रेणियां हैं, एकदम देव पूजा निरर्थक नहीं है, फिर बताएंगे क्यों और कैसे। इसलिए फिर भगवान की शरण गई, तुरंत सीता को सफलता मिल गई और पहले जो जो याद आया जहिते ही बजने लगी, फिर धीरज धर के देवता पूजने लगी, कोई सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़े। आंख बंद के जो तो भगवान सकल उर्वासी, उस परमात्मा का सुमरण किया जिसका की करना चाहिए, बार बार मानस में जिसके करने के लिए आदेश से सफलता मिल गई सीता जी को। तो हमारी परंपराओं में ये है, उस परंपरा में सीता भी थी, परंपराओं से गुजरी, लेकिन सफलता तब मिली जब उस सकल उर्वासी ही प्रभु की शरण में। इसलिए जब तक न समझ में आए सब करो, लेकिन पूजा चाहे जैसे करो, भजन भगवान समर्पण एक प्रभु के प्रति होना चाहिए। कण कण में व्याप्त है तुका, उनमें न हुई सब जगह है। दूसरी बात, रचना तो भगवान ने कर दिया, हम कैसे पूजा करें। तो विश्वकर्मा का शुद्ध अर्थ होता है विश्व में प्रगति और अगति, इसके दो माध्यम है शुभ और अशुभ कर्म। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है संसार में, इसने विश्व की रचना कर रखी। अब तक तो रचना भगवान ने की थी, अब कर्म ने कर रखी। जो कर्म हमारे हिस्से में पड़ा है, जो जिस पर हमारा अधिकार है उसको करो, और विश्व में चाहे प्रगति की मंजिल छू दो चाहे अगति के गर्त में चले जाओ। भगवान राम ने तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है, इसने विश्व की संरचना कर रखी है। विश्वकर्मा, विश्व में कुछ पाना है तो कर्म करो, और जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा कर्म करो वैसा फल भोगो। लेकिन इनमें सर्वश्रेष्ठ कर्म है हरि का सुमरण, उसका फल विपरीत भोग नहीं मिलेगा, बल्कि जो चाहोगे वो समृद्धि मिलेगी। भगवान राम का अभिषेक हो चुका था, रावण मारा जा चुका था, शांति की लहर दौड़ गई थी, तब भगवान ने एक बार सभा बुलाई। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, गुरु आए द्विज आए, सारा जनपद एकत्रित हो गया। तो सुनऊ सकल पुर जन मम पानी, कहे उन कछु ममता उरे आनी, सारे जनपद के निवासियों मेरी बात सुनो, मैं कोई ममता लाके नहीं कहता, जो अनिति कछु भाखो भाई, तो मोहि बर ज्यों भय विसराई, मुझे मना कर देना मैं मान जाऊंगा। तो भला कहा क्या कि बड़े भाग्यमान सतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, ये देवताओं को दुर्लभ, देवताओं की अपेक्षा एक चीज आपके पास ज्यादा है। क्यों? देवी योनि में पुण्यों के फल स्वरूप भोग तो भोग सकते हैं, पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं आके गिर भी जाएंगे। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, तेतम भुक्त्वा स्वर्गीय लोकम विशालम। किंतु नवीन साधना करके ऊपर अपने परमात्म स्वरूप तक को नहीं पहुंच सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, ये क्षमता है तो केवल मनुष्य शरीर में। इसलिए सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, देवता भी आसावान है इस मानव शरीर के, भला क्या विशेषता इसमें? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक समारा, ये साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। साधन माने आटा दाल रोटी जुटाना नहीं, वह साधन जो तुमको मुक्ति पर्यंत दूरी तय करा दे। श्रद्धा है, समर्पण है, विवेक है, वैराग्य है, जो भगवत प्राप्ति में चाहिए वो सब भगवान ने इसमें फिट करके भेजा है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक समारा, ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर जिसने निजी परलोक नहीं संवार लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, वो जन्मांतरों में दुख पाता है, सिर धुन धुन के पछताता है, काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। मनुष्य के पास दो तीन बहाने हैं, समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा लड़कुआ कारबार संभाल दे तो फिर भजन करूंगा, होता है ना। मामा कह रहे थे कि हम भजन करेंगे, लेकिन अब नाम ही नहीं ले रहे हैं। और कर्म हमारे भाग्य में नहीं लिखा, कर्म को दोष देना, कर्ता धर्ता भगवान है वो कराते ही नहीं, ईश्वर को दोष देना। किंतु परमात्मा राम स्वयं कहते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, व्यर्थ दोष लगाता है। दुर्लभ मानवतन प्राप्त अपना निजी परलोक नहीं संवार लेता तो काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है, अर्थात मनुष्य कर्मों का रचयिता है। कर्म करके वो परम परलोक भी संवार सकता है और अपने को गिरा भी सकता है। गिराने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, खाली भजन मत करो गिरे गिराए, परलोक सुधारना पड़ेगा। मनुष्य कितना कमा लेगा, अधिक से अधिक पराकाष्ठा है कमाई की, स्वर्ग स्वर्गीय ऐश्वर्य। तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इस शरीर का फल केवल विषय भोग नहीं, विषय भोग में कितना जुटा लोगे, स्वर्गीय ऐश्वर्य स्वर्ग भी स्वल्प है और परिणाम में दुखदाई, आज है तो कल चला जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे भजकर लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं देता हूं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गे लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करते हैं, इंद्र पद को सुशोभित करते हैं सुशोभित, किंतु क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। पुण्य जहाँ क्षीण हुआ, पॉकेट खर्च घटा, तो फिर फाइव स्टार छोड़ो, मृत लोक में आके गिरना पड़ता। हम बैठे थे स्वर्ग में, स्वर्ग खिसक गया हमारे नीचे से, दुख नहीं तो क्या है। इसलिए स्वर्ग भी स्वल्प है, बहुत थोड़ा अल्प है और अंत दुखदायी, परिणाम में आपके लिए दुख का आरक्षण। इसलिए भजन के द्वारा हम अपने परलोक को संवार सकते हैं। भगवान ने अंतिम छोर में कहा, जो परलोक कहीं हाँ सुख चहे हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गये हो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो परलोक चाहते हो, परम श्रेय चाहते हो, हरि का पद चाहते हो, अथवा यही सुख और समृद्धि चाहते हो, दूध पूत से गैगड चाहते हो, तो मेरे वचन को ध्यान से सुनो और हृदय में दृढ़ता से धारण करो। डायरी में लिख के मत रखो। हृदय में धारण का अर्थ होता है सदा याद बनी रहे। भला है क्या, तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। सबके लिए सुलभ, सबके लिए सुखदाई, केवल एक ही मार्ग है, मेरी भक्ति, यही श्रुतियों ने गाया है। सीता जी बाजू में बैठी थी, उनकी भक्ति नहीं कहा। हनुमान भी चंवर लेके बैठे थे, उनकी भक्ति नहीं कहा। मेरी भक्ति, यही श्रुतियों ने गाया है। यहाँ समृद्धि चाहते हो तो मेरी भक्ति, परम धाम चाहते हो तो मेरी भक्ति। सबके लिए सुलभ सुखदाई, केवल एक ही मार्ग है, मेरी भक्ति। तो भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। ये मानस का संपूर्ण सत्य इतना ही है। तो अनंत योनि भोग भोगने के लिए है, मनुष्य कर्मों का निर्माता है, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होता है। आपके कर्म में कुछ नहीं लिखा है, सब कुछ लिख जाएगा। कर्म एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आप भगवान को भी प्राप्त कर सकोगे। भगवान कहते हैं अपना परलोक संवारो, नहीं संवारता अपनी आत्मा का हत्यारा है। सिर धुन के पछताता है, कालक्रम ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है, अर्थात हमें करना है। भगवान बुद्ध गंगा किनारे टहल रहे थे, एक ज्योतिषाचार्य उधर से निकले तो पदचिन्ह देखा, तो बैठ के किताबों का बंडल खोला, लगे उस पदचिन्ह का विश्लेषण करने। तब उन्हें पता चला ये चक्रवर्ती एक सम्राट का चरण चिन्ह है, लगता है ज्योतिष झूठ है। चक्रवर्ती है तो फटे हाल नंगे पांव क्यों घूम रहा है, कहां गया चंवर छत्र और वो ऐश्वर्य, लगता है ज्योतिष झूठ है। किताबों का बंडल गंगा में प्रवाह करने चला, इतने में उसे याद आया कि पदचिन्ह तो ताजा है, वो सज्जन यहीं कहीं होंगे, देख तो लूं भला है कौन। तब थोड़ा दाहिने बाएं ढूंढा, एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बुद्ध बैठे थे पद्मासन से, चरण की रेखाएं पड़ी, हाथ की रेखाएं पड़ी, गले और मस्तिष्क की रेखाएं देखी, मिलान करके तब फिर झकझोर के जगाया। बोले अरे माँ से आप हैं कौन, आपने तो हमारी जिंदगी चौपट कर दी। हमने 30 वर्ष तक मन लगा के ज्योतिष पढ़ा, लगता है ज्योतिष झूठ है। आपने संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण, इन लक्षणों के व्यक्ति पिछले 2000 वर्षों में दो केस हैं, दो पूर्व में हुए हैं, तीसरे आप हैं, आपको चक्रवर्ती होना चाहिए। तो फटे हाल एक खप्पर लेके भीख मांग रहे हैं गली गली, ज्योतिष बिल्कुल झूठ है। अरे हाथ पांव है तो रेखाएं होंगी ही, मोड़ हैं और क्या है, कृपया इतना बता दें आप हैं कौन। तब भगवान बुद्ध ने कहा, भाई पंडित तुम्हारी ज्योतिष बिल्कुल सही है, मैं जब जन्मा था ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट होगा, जब मैं बड़ा हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो हो चली थी, किंतु भजन के प्रभाव से, तपश्चर्या के प्रभाव से हमने उस संस्कार को काट दिया। अब वो संस्कार मुझे विवश नहीं कर सकता। वो संसार में एक प्रकार का जीवन जीने का तरीका था, उस कुसंस्कार को हमने काट दिया। अब मुझे वो संस्कार चक्रवर्ती नहीं बना सकता, चक्र में नहीं डाल सकता भजन और तपस्या के प्रभाव से। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार स्वजन मन माही। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। असाध्य कुअंक घोर नरक लिखा है, यातनाएं लिखी आपके कर्म में वो भी मिट जाएगी। केवल सबको श्रद्धा और समर्पण के साथ एक प्रभु का नाम, दो ढाई अक्षर का नाम ओम अथवा राम, जो सीधा उस परमात्मा को ही संबोधित करते हो, ऐसे नाम का साथ, नाम का जाप समर्पण के साथ शुरू भर कर दो। चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे, कंजूस के सोने की तरह कभी चित्त से न उतरे, विस्मृत न हो। शौच जाते, पानी पीते, खाना खाते, उठते बैठते जब तक जागो तब तक स्मृति पटल पर बना रहे श्रद्धा समर्पण भाव के साथ, तो सारी व्यवस्था भगवान करने लगते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, विश्व में शुभाशुभ रचनाओं की जिम्मेवारी कर्म पर आती है। तो विश्व में कर्म ही सब कुछ है। अपना सत्कर्म वो है जो भगवान के प्रति समर्पण होके आपको अपने घर की ओर ले चले, अपने सहज स्वरूप की ओर जे ले चले, आपको अपने अपने स्वरूप का दर्शन स्थिति दिला दे, वो सत्कर्म कहलाता है। आपको पूर्ण कर दे पुण्य कर्म कहलाता है, आपको पतन के गर्त में ले जाए वो पाप कर्म कहलाता है। संसार में कितना भी कुछ हो जाए एक दिन तो जाना ही होता है, क्यों न हम सत्कर्म वो कर्म करके चले जिसमें भगवान आगे पीछे रक्षक के रूप में खड़े हों। एक समर्पण के साथ चिंतन करना चाहिए। एक महात्मा महाराजा तो मनुष्य कर्मों का निर्माता, समुद्र किनारे महाराजा दशरथ, उनके जीवन में आता है पूर्व जन्म के संस्कारों में ये नहीं था उनके भाग्य में लिखा हुआ कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे, ये इसी जन्म की उनकी कमाई थी, क्योंकि मनुष्य कर्मों का रचयिता है। एक बार महाराजा दशरथ नहीं थे, युवराज दशरथ उभरता हुआ लड़का, जब जवानी चढ़ने लगती तो आगे पीछे नहीं दिखाई देता, धनुर्वेद पर शब्द वेदी बाण पर हाथ रमा हो गया, थोड़ा हाथ सद गया, नशा सवार हो गया। आजकल लड़के होते ना क्रिकेट के प्लेयर, खाना भूल जाते हैं, दिन भर हाथ मलते रहते हैं ऐसे, ऐसे ही उस युग जमाने का दशरथ की क्रिकेट यही रही होगी, नशा सवार हो गया। हुआ सवेरा उठाया रथ, निकल गया जंगल में, कहीं से झुरमुट में से आवाज आई चिक 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 चिड़िया की, मारा बाण तो जमीन पर आ गई। बंदर बोला खाऊं तो भी जमीन पर, शेर दहाड़ा तो बाण सीधा शेर की छाती में। और एक बार यही कर्म उसका चल ही रहा था कई काफी समय से, एक बार एक दुर्घटना घट गई, बुड़बुड़ की आवाज आई जलाशय से। दशरथ ने समझा कि हाथी पानी पी रहा है, सूंड से बुड़बुड़ा रहा है, मारा बाण तो श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब दशरथ ने अपने शिकार को जाके देखा तब दशरथ बोले, विप्रवर अनजान में धोखे से मुझसे महान भूल हो। श्रवण कुमार ने कहा, युवराज आपसे कोई भूल हुई ही नहीं, जो जन्मा है एक दिन अवश्य मरता है, और हर मरने वाले का कोई न कोई बहाना अवश्य होता है, हो सकता हमारे मरने का यही बहाना रहा हो। आप मेरी चिंता छोड़ दें, मेरे माँ बाप प्यास से ही उन्हें पानी पिलाते, प्राण कंठगत है, मरणांतक पीड़ा है, श्रवण को न अपने मौत की चिंता है न पीड़ा की, उसको चिंता है तो माँ बाप के प्यासे होने की, यही है, यही सच्चे पुत्रों की यही परिभाषा है, आज भी रिकॉर्ड है। तो सुनो जननी ते सुत बड़ भागी, जे पितु मातु चरण अनुरागी। सब बच्चों को इससे सबक लेना चाहिए, कोरी कल्पना नहीं। सवेरे उठते ही पहले माता का चरण छुओ, फिर पिता का छुओ, बड़ों को नमन करो, वो जरूर वो आशीर्वाद पा जाएगा जो सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। बाड़े पूत पिता के धर्मों। तो श्रवण कुमार के मरणांतक प्राण कंठगत हो गया, मरणांतक पीड़ा है शरीर में, उस वेदना पर उसका कोई ख्याल नहीं। उसका ख्याल है तो माँ बाप प्यासे हैं, जाओ। जब जाके माँ युवराज दशरथ ने घड़ा रखा, भर के दिया, तो बुढ़ा बुढ़ी बोले, श्रवण तुम बोलते क्यों नहीं, हमें आशंका हो रही है, तुम बोलोगे नहीं हम पानी नहीं पिएंगे। तब बोला युवराज, बताई परिस्थिति, बिगड़ खड़े हुए दोनों बुजुर्ग बोले, नालायक उदंड युवराज, तुमने बगैर देखे बाण चला दिया, एक पित्री भगत तपस्वी को मार डाला, जाओ, जैसे पुत्र वियोग में तड़फ के हम मर रहे हैं तुम भी मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, जाओ। एक आशीर्वाद दिया, चले गए। दशरथ के 350 रानियां थी, 3 पटरानियां थी, तीसरे की एक बुढ़ोती में कहीं से पा गए, कई बुढ़ोती की रानी बड़ी खतरनाक होती, जेके विश्वास ने हो तो भी आकर के देख लो ना, पता चल जाएगा। वो बोल दिया अटेंशन तो आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा। यही दुर्दशा दशरथ बेचारू झेल रहे थे, एक बार मचल गई, बहुत दशरथ घोड़े गिरे लेकिन कोई लाभ नहीं। अंत में राम बन गए, और नहीं, हाँ, चौथे पंथ लड़का ही नहीं हुआ, किंतु उन महापुरुष का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, लड़के भी हुए और वियोग भी हुआ। जब दशरथ मरने लगे तब फिर बोले कौशल्य, अब तो तुम भी हमें नहीं दिखाई देती, हमें केवल श्रवण कुमार के माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, मेरा अंत काल आ गया। और दशरथ मर भी गए, ये इसी जन्म की कमाई थी। तो मनुष्य कर्मों का निर्माता है, विश्व में कर्मा ही सब कुछ है, विश्व में जो कुछ है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। विश्व में आप अपनी सुरचना कर सकते हो, भगवान की गोद में अपने को फेंक कर समर्पण के साथ चिंतन करो, विश्व का पार भी पा जाओगे। और भूल भुलैया भूल गए तो 2 चक्कर और पड़ जाएंगे आवागमन के। एक साधक, हाँ, केवट के तकदीर में कुछ नहीं था, राम भक्ति करता सुन रेखा। लोग कहते हैं भाग्य में नहीं लिखा, भाग्य में तो रेखा थी ही नहीं। साधु समाजन जा सुन लेखा, साधु समाज तो उसने देखा ही नहीं था बेचारे ने, राम भक्ति करता सुन रेखा, भक्ति की रेखा थी नहीं, एकदम साफ कोरा कागज था। भाग्य में तो भक्ति नहीं थी, किंतु राम की नयापन जब ही ते, भयं भुवन भाजन तब ही ते। क्यों, भक्ति की रेखा ही नहीं थी तो भगवान दर्वित कैसे हो गए, भक्त शिरोमणि कैसा हो गया। केवट ने आरंभ से ही विचार किया, नाव इस पार उस पार करते, घोंगा मछली मारते मारते बब्बा चले गए, बाबू मर गए, खटो खाओ मर जाओ, खटो खाओ मर जाओ, बस यही है संसार। वो विचार करने लगा, उसकी समझ में आया कि लाइन भक्ति की सच है। वो भगवान के वियोग में नाव चलाना भूल गया, एक दिन भगवान को रास्ता बदल के आना पड़ा, गले से लगाया, तो राम कीने आपन जब ही ते, भयं भुवन भाजन तब ही ते। त्रिलोकी में कोई पवित्र पुरुष था तो वे केवट, जिसकी छां छू लेने पर भी स्नान करते थे लोग। लोग किसी गरीब को अपनाते थे, कहते हैं तू हमारा, वहां बैठ, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो मम प्रिय भरत सम भ्राता, तात रहे हूं पूरे आवत जाता, हमारा घर तुम्हारा घर है, आते जाते रहना, घर का दरवाजा खोल दिया, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना भाई भरत। और केवट का आसन वहीं लगता था जहाँ भरत का लगता था, बराबर की कुर्सी पर। भगवान जब अपनाते हैं, थोड़ा सा भिक्षा नहीं देते, अपनी भगवत्ता, अपना ऐश्वर्य सब कुछ दे देते हैं। जाना तो तुम्हें हो जाए, उन्हें जाना तो वही हो जाता है, वो थोड़ा सा नहीं देते, सेवक को अपने समानांतर स्थिति दे देते हैं। केवट पा गया, भक्ति की कर्म में तो नहीं लिखी थी, भक्त शिरोमणि हो गया। समुद्र किनारे भगवान राम पूरी बांदरी सेना के साथ जब खड़े हुए, विशाल तरंगे मार रहा था समुद्र, तब भगवान राम ने कहा, विभीषण तुम तो इस समुद्र पार आते ही जाते रहते हो, कोई युक्ति तुम ही बताओ, ये मेरी फौज कैसे पार हो। तो विभीषण ने कहा, प्रभु समुद्र से प्रार्थना की जाए। भगवान ने कुश की चटाई बिछाई और प्रार्थना में बैठ गए। लक्ष्मण भड़क गया, तो मंत्रण यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। ये बहुत दुखी हुआ लक्ष्मण, अति दुख पावा, और बिगड़ खड़ा हुआ, बोले अरे अच्छे सलाहकार मिल गए आपको। कादर मन कर एक सहारा, देव देव याल से पुकारा। कायरों के मन का एक ढाढ़स है, कायरों के मन की, बुजदिलों के मन की एक बैसाखी है, दैव है, भाग्य है, होनहार है, तकदीर है, देव का कौन भरोसा। नाथ देव कर कौन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोषा। देव का कौन भरोसा, देव जानते हो, भाग्य तकदीर होनहार संस्कार प्रारब्ध, इस मुकद्दर का कौन भरोसा। कदाचित देव में नहीं लिखा है तो हाथ जोड़ने से लिख जाएगा क्या, ये तो कायरों के मन की एक वैसा की है, ढाढ़स है। समुद्र को सुखा दीजिए, धनुष उठाइए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ऐसा ही होगा, हमें जरा नीति का पालन कर लेने दो। 3 दिन नीति का पालन किया और 4th दिन बोले, लक्ष्मण धनुष तो लाओ। जहाँ बाण अनुसंधान किया तो समुद्र एक स्वरूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। बोले प्रभु मर्यादा तो आपकी बनाई हुई है, मैं अवश्य सूख जाऊंगा। आप ऐसा करें, आपके इस बांदरी सेना में 2 युवक ऐसे हैं, नल और नील, ये हैं विश्वकर्मा के बेटे, ये जहां पत्थर रख देंगे तिनके छुए गिरी भारे, तरही सिंधु परताप तुम्हारे, इनके छूने से भारी पहाड़ छू दें तो तैरने लगेगा बस, और पुल पार हो जाए, प्रभु आप पार हो जाए, जब तक सृष्टि रहे अनंत काल तक लोग पार होते रहे। रामेश्वरम का पुल तो आज नहीं है, और आशीर्वाद दिया था कि अनंत काल तक। वास्तव में संसार ही एक समुद्र है, नाथ नाम तब से तो नर चढ़ भव सागर तरही, सुनहु भानु कुल के तू, और जामवंत कर चोरी करे। संसार एक समुद्र है, भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेमन जे करते। संसार समुद्र है जिसमें नाम ही सेतु है, सेतु श्रेणी वाला नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर है। तुझे रामेश्वर दर्शन करही, स्वर माने आपकी श्वास, भगवान के चिंतन में जो स्वर का निरोध कर लेगा, श्वास को अचल स्थिर खड़ी कर देगा, इसमें उठने वाले संकल्प विकल्प की लहर जिस क्षण शांत हुई, स्वर विदित स्थिर हुआ, यही रामेश्वर दर्शन। इस निरोध के साथ ही जो आड़ में छिपी सत्ता, उसी का नाम है राम। तो जे रामेश्वर दर्शन करे, बिनु प्रयास भव सागर तरहि। साधना पूरी हो गई, प्रयास पूर्ण हुआ, स्वर निरोध हुआ, आगे प्रयास खत्म, बिनु प्रयास भव सागर तरहि। भगवान उस टाइम अपनी जानकारी देंगे, उसका नाम है ज्ञान। तो जे गंगा जल आनी चढ़ाई है, तेसा योज्य मुक्ति नर पाई है। उस वक्त भगवान जो अपनी अनुभूति देंगे, उस प्रत्यक्ष जानकारी का नाम है ज्ञान, अनुभूति। तो गंगा जमुना खूब नहाने गया, न मन का मैल, 8 पहर जूझती ही बीता जस को लुका बैल, चुलिया काहे न धुलाई। गंगा गलत नहीं है, स्नान तो नियमित करना चाहिए, हमारा मैल धुलेगा, पुण्य की वृद्धि होगी। लेकिन पूर्णतया मैं हम आज धुल गया तो कल फिर हम मैल चढ़ा लेंगे, फिर पाप कर लेंगे। इटवा गंगा किनारे है, रोज वही में शौच जाया करते हैं, वही में नहाते हैं, लेकिन लाठी रोजे बचत है। मैल तो धो लेते हैं लेकिन फिर मैल पैदा कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान एक ऐसी गंगा है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मीह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले न आत्मनि बिंदते। अर्जुन, ज्ञान के समान निस्संदेह पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है सृष्टि में, तो ज्ञान को हम पावे कहाँ। तत्स्वयं, उसको तुम खुद योग संसिद्ध काले, योग के आरंभ में नहीं, योग के मध्य में नहीं, योग की परिपक्व अवस्था काल में आत्मनि बिंदते तुम हृदय देश में उसे जानोगे, प्राप्त कर लोगे। तो स्वर निरोध के साथ भगवान के दर्शन और जो अनुभूति मिलती है, जानकारी, उसी का नाम ज्ञान है। वो अलग थे, हम अलग थे, तो हमने जाना, वो जानने में आए, लेकिन जानत तुम ही हो ही जाए। उन्हीं में जब विलय हो गया, यही है गंगा जल का चढ़ाना। हम अलग होते तो हम जानकारी को संजो कर रखते, उसी में मिल गए तो कौन जानकारी रखे, किसकी रखे। देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर खुद ही गुम हुई तो खुदा हो गया। हर महापुरुषों ने निर्णय एक ही दिया है, अब वाले बेचारे खाने पीने में उलझ गए, नहीं समझ पाते। देखते देख नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, अब लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट ही ठीक है। तो आप संसार समुद्र है, ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति बांद्री सेना है, भगवान उसके संरक्षक है, अनुभवों के द्वारा सदा साथ है। नल और नीर, नाम और नियम, नाम को जब नियमित रूप हम दे देते हैं तो भव सागर पर तैराने वाला हो जाता है। आपका हर संकल्प संसार की अभिवृद्धि करने वाला है, डुबाने वाला है, किंतु नाम जब नियमित रूप ले लेता है तो हर संकल्प भगवान के नाम से ओतप्रोत निकलती है, हर श्वास से ओतप्रोत निकलती है। तो नाथ नाम तब से तो, अर्थात हर हालत में नाम को इतना जाप करो जो नियमित रूप ले ले, नियमित श्वास में प्रवाहित हो जा, जहाँ स्वर निरोध की स्थिति आई तो सेतु तैयार, आप पार हो। सृष्टि में कभी कोई मनुष्य पार होगा तो यही सेतु है। तुझे रामेश्वर दर्शन करही, बिनु प्रयास भव सागर तरही। हम भी गए थे रामेश्वर, लौट के आए, भजन करना पड़ रहा है, पार नहीं हो सके, पुण्य बड़ा अच्छा लगा। एक महात्मा बोले हम 10 बार हो आए गंगोत्री से जल लेकर, पैदल यात्रा करके रामेश्वरम अभिषेक कराए, 11वीं बार महाराज जा रहे हैं। देखो वो कांवर रखी हुई है गंगोत्री के जल की, तो महाराज बहुत बिगड़े, भटके रहो पूरी हरामी की। तो महाराज वो बोला, महाराज गलत है क्या? बोले गलत नहीं तो क्या, कपड़ा रंग लिया अब तक नहीं समझ में आया। फिर उन्हें समझाया, उन्होंने कांवर रखी। तो ये सेतु ऐसा है राम नाम का, एक बार जाने से तो सायुज्य मुक्ति पा जाता है। ये 10 बार गए तब भी बेचारा जीव का जीव, वास्तव में रामेश्वर क्या, वास्तव में स्वर के निरोध के साथ ही इसके आड़ में छिपी सत्ता है, वो परम तत्व है परमात्मा, जो हृदय में निवास करता है, वो विदित हो जाता है। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है, नाम ही सेतु है। नल और नील, हर संकल्प आपका भले बुरे पता नहीं क्या आ रहे हैं, नाम जब नियमित रूप ले लेगा श्वास में तो उस टाइम हर संकल्प इष्ट से ओतप्रोत प्रवाहित होगा, सेतु बन जाएगा, संसार श्वास में रही नहीं जाएगा। भगवान आगे का हालचाल खुद संभाल लेंगे, उंगली पकड़ के, जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा रहूं कब हम छाड़ू साथ। एक संत थे, एक महात्मा, भगवान ने कहा इसलिए विश्वकर्मा का अर्थ होता है, विश्व में यदि मानव तन मिला है तो आपका कर्म ही आपका क्षेत्र है। कर्म करते समय पूजा करो, पूजा विश्व के निर्माता की करो और उनके आदेश का पालन करो, कि जैसे नरतन भव बारिद कहूं बेरो, सनमुख मरुते अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साच सुलभ करी पावा। मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए जहाज है, उपाय है। मेरी अनुकूलता अनुकूल वायु है, सदगुरु ही केवट है, कर्णधार है। ये साज दुर्लभ है, मानव तन भगवान की अनुकूलता सदगुरु की प्राप्ति तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। ऐसे दुर्लभ मानव तन को पाकर जो भव सागर नहीं तर जाता वो कृत निंदक करने से कतराता है, कल पर टालता है, मंदमति बुद्धि का बड़ा हल्का है और अपनी आत्मा का प्यारा है। बस अर्थात मनुष्य कर्मों का रचयिता है, शुभ कर्म करके आप वहां पहुंच सकते हो जो अविनाशी पद भगवान का धाम है। वो आप ही का छिपा हुआ स्वरूप है, आपका निजी अनंत जीवन और शाश्वत शांति का पद है। फिर कमाना नहीं पड़ेगा, रहेगा मालपानी। और दूसरी तरफ भवाटवी है अपार संस्कृति का भ्रमण, इसलिए मनुष्य कर्मों का निर्माता है। कदाचित मनुष्य शरीर उपलब्ध हुआ हम नहीं कर सके, आत्मा हन गति जाए। अपनी आत्मा का हत्यारा वो स्वयं है, वो हिंसक है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।